Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your hostess, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Sparsh Saxena.
धन्यवाद लालिमा. नमस्कार. घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और हम आप सभी श्रोताओं का आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में स्वागत करते हैं. आज के इस अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और साथ ही चर्चा भी करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक एसपी शर्मा. एसपी शर्मा जी, आपका मार्केट मंत्र में बहुत बहुत स्वागत है.
जी शुक्रिया. थैंक यू.
और सबसे पहले नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर. अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डांग.
यस, थैंक यू स्पर्श एंड वेलकम डॉक्टर शर्मा टू आवर स्टूडियोज. वेल, हियर वी गो विद द हेडलाइंस. डोमेस्टिक इक्विटी बेंचमार्क इंडिसेस कंटिन्यू अपवर्ड मार्च. सेंसेक्स एंड्स एट न्यू क्लोजिंग हाई ऑफ 85,836 व्हाइल निफ्टी सेटल्स एट फ्रेश पीक अबव 26,200. Finance Minister Nirmala Sitharaman attends 9th annual meeting of AIIB Governors Board in Samarkand. And crude oil prices fall. Brent crude is trading down at $71.58.
घरेलू शेयर बाजार में बढ़त का सिलसिला जारी. सेंसेक्स 85,836 और निफ्टी 26,200 पर बंद. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एआईआईबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं वार्षिक बैठक के अवसर पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात की. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट. ब्रेंट क्रूड की कीमत $71.58. और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बाजार के ऊपर. घरेलू बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त का सिलसिला जारी रहा और आज रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 666 अंक यानी 0.7% की बढ़त के साथ 85,836 पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 211 अंक यानी 0.8% के लाभ के साथ 26,216 पर रहा. एनएससी की 127 कंपनियों ने अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ और 44 अपने निचले स्तर पर रहीं. बात करें बीएससी के मिड कैप और स्मॉल कैप की तो मिड कैप लगभग सपाट बंद हुआ और स्मॉल कैप 0.39% नीचे रहा.
All right, let's have a look at the stocks in details now. Domestic benchmark indices Sensex and Nifty extended their winning streak before ending today's session at new closing highs. BSE Sensex achieved a new all-time high of 85,930 in intraday and surged 666 points or 0.7% before settling at a new closing peak of 85,836. Meanwhile, Nifty 50 reached a record high of 26,250 during the session before ending at 26,216 with an uptick of 0.8% or 211 points. In the NSE, 127 companies hit their 52-week high, 44 hit their 52-week low. The broader market at the BSE underperformed the benchmark indices. Mid-cap index ended flat, while small-cap index was down 0.39%. In the Sensex index, 28 out of 30 companies ended in positive territory. The top gainers were Maruti gained more than 4.5%, Tata Motors added more than 3%, and Mahindra increased nearly 3%. Conversely, the two laggards today were Larsen & Toubro, shed nearly 1%, and NTPC fell nearly 0.5%. In sectoral indices, at the BSE, 13 out of 20 sectors logged gains. The top gainers today were auto increased more than 2%, metal rose 2% and commodity has advanced more than 1%. Meanwhile, the top laggards today were consumer durables, slipped 0.8%, capital goods as well as industrials lost more than 0.5%, and power fell 0.2%. The overall market breadth, the BSE, was negative, as out of 4,081 companies, shares of 1,686 advanced and 2,293 declined, and 102 remained unchanged. And for the rupee, what's their spurs?
जी बिल्कुल, विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे गिरकर 83 रुपये और 64 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 100.83 पर कारोबार कर रहा था।
अ वेरी प्रेडिक्टेबल फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर शर्मा, एवरी टाइम वी थिंक दैट दिस इज द न्यू पीक, द पीक सीम्स टू बी रेजिंग इट्स बार 85,930, unbelievable yet true, and probably one of the most robust Sensex in the world right now. What makes this happen?
Yes, markets are surprising everyone, I believe, because nobody was anticipating that markets will touch such levels in the recent months or recent weeks because of global headwinds. Now the geopolitical developments are deepening once again, and that's why everybody was worrying about the likely impact on the financial markets. But we have great drivers of growth, like we are growing, as our growth remains always intact. We are growing more than 8% during the last 3 years on an average, and current year also is anticipated at around 7%. So that is the great growth trajectory of the Indian economy. And the and greatest driver is the inflation trajectory is coming down. Inflation is now cooling down to 3.65% for the last reading of August 2024. So that is giving a big push to the market to move forward and to become more and more strong, because expectations are a cut in the repo rate by Reserve Bank of India in the coming times, maybe in the next policy or next to next policy. So people are expecting that RBI will also be in a cooling stance, like the Fed. They have reduced the Fed rate by 50 basis points. So drivers of growth are also very, very strong at this juncture to support the markets at this level. But there are still headwinds from the global front that geopolitics may deepen more, and that can impact the financial markets across the world. So a mixed structure is there globally, but definitely India's fundamentals are very, very strong, as we are growing in the fast trajectory, supported by the manufacturing growth, supported by the core infrastructure and our exports, and inflation coming down. And fortunately, we have completed the 10 years of Make in India also. That is again a great support to the markets and making it more and more strong at this juncture.
Dr. Sharma, अक्सर बात करी जाती है साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में, स्पेशली बाजार में अगर देखें, बट अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी देख रहे हैं तो लगातार, जैसा कि अभी आपने बताया, जिक्र किया कि ऑल टाइम हाईस पे चल रहे हैं, लेकिन अगर हम नजर डाल रहे हैं ब्रॉडर मार्केट्स पे तो मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रदर्शन लगभग जो है सपाट और उससे नीचे ही रहा है, इसका क्या मुख्य कारण है?
देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो ग्रोथ आती है, सबसे पहले जो ब्लू चिप्स हैं उनमें काफी तेज गति से बढ़ते हैं, फिर उनको जो हमारे मिड कैप्स हैं, स्मॉल कैप्स हैं, फॉलो करते हैं। जो हमने देखा 2-3 महीने पहले, एक बहुत बड़ी बढ़त हमने देखी कि ऑल टाइम हाई पे जो हमारे मिड कैप्स थे, स्मॉल कैप्स, काफी अच्छा उनका प्रदर्शन था। लेकिन एक लेवल पे जाके जब मार्केट्स बहुत हाई स्तर पे, जब मैं कहूंगा कि उच्चतम स्तर पे जब होती हैं, तो लोगों की मुनाफा वसूली होती है
जी।
तो मुनाफा वसूली में फिर जो मिड कैप्स हैं उनमें पहले मुनाफा वसूली आई, और उसके बाद फिर लार्ज कैप्स ने उनको वापस सपोर्ट किया मार्केट को। तो और दूसरा, एक एक जो नई कंपनीज हैं, जो मिड कैप कंपनीज हैं, स्मॉल कैप कंपनीज हैं, उनमें थोड़ा सा लोगों का स्पेकुलेटिव पर्सपेक्टिव भी रहता है कि इसके शेयर के दाम वहां तक जा सकते हैं, उनमें ऊंचाई पे जाने की बहुत क्षमता होती है। तो लोग इसको, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि 100 रुपीज का 200 रुपीज का शेयर है जो 1000 तक जा सकता है, तो ऐसी साइकोलॉजी के साथ जो है लोग इन्वेस्ट करते हैं, कई बार जाते भी हैं, बहुत उनमें स्तर भी आता है, लेकिन हमारा स्मॉल कैप मिड कैप बहुत स्ट्रांग है, दैट इज सपोर्टेड बाय कंड्यूसिव पॉलिसी एनवायरमेंट। काफी ज्यादा रिफॉर्म्स हुई हैं सरकार ने, जो रिफॉर्म्स की पीछे चार पांच वर्षों में खास करके जो कोरोना के टाइम पे रिफॉर्म्स हुई, तो बहुत मजबूत सेक्टर है। लेकिन ये जरूर है कि मुनाफा वसूली जरूर होती है और चर्निंग होती है, कई बार जो लोग हैं जो इन्वेस्टर है उनको लार्ज कैप में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उन्होंने लोअर स्तर पे खरीद के हाई पे जाके उसको सेल किया, फिर वो छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं कि इसमें हमने ग्रोथ जो था एंटीसिपेटेड जो टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है, अब हम लार्ज कैप या स्मॉल कैप में जाना चाहते हैं, कई बार लार्ज या स्मॉल कैप से निकल के फिर वो ब्लू चिप्स में जाना चाहते हैं। तो एक ऐसा चलन मार्केट में रहता है कि बिकॉज मार्केट्स आर ऑलवेज डायनामिक, मार्केट्स आर नॉट स्टैटिक, कि आदमी ने एक शेयर में इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर ही वो उसी को देखेगा या उसी के मद्देनजर उसमें इन्वेस्ट करेगा। पीपल इन्वेस्टर्स शिफ्ट देयर पोर्टफोलियोज फ्रॉम हियर टू देयर, वो चर्निंग उनमें प्रोसेस चलता रहे विद इन द, ये नहीं है कि लार्ज कैप से लोग मिड कैप में आएंगे, मिड कैप से स्मॉल कैप में आएंगे, फिर उसमें से, ऐसा भी नहीं है। विद इन द सेक्टर अगर आप देखेंगे मिड कैप में भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स में से लोग एक में से निकल के दूसरे में जाएंगे, एक सेक्टर में से दूसरे में जाएंगे, तो इस तरीके से एक मार्केट डायनामिक्स जो है वो इस तरीके का हमें एडवाइस करते हैं कि देयर इज नो कॉन्स्टेंट इन द मार्केट, नो स्टैटिक बिहेवियर ऑफ द मार्केट, पीपल आर ऑलवेज डायनामिक, इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज डायनामिक एंड मार्केट्स आर मोर डायनामिक टू मूव फॉरवर्ड एंड टू बिकम मोर एंड मोर रोबस्ट।
व्हेन वी टॉक ऑफ सेंसेक्स टचिंग 85,000 प्लस, इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट देर इज अ न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस इन द स्टॉक मार्केट्स नाउ, द फैक्ट दैट अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स हैव बीन ओपन बाय इंडियंस, नो नेवर बिफोर हैव सो मेनी बीन अकाउंट्स बीन ओपन्ड, दैट्स वन थिंग। सेकेंडली देर सीम्स टू बी अ शिफ्ट फ्रॉम पीपल इन्वेस्टिंग इन द बैंक और डिपॉजिटिंग इन द बैंक रादर एंड मूविंग इट टू द स्टॉक मार्केट्स, दैट ऑल्सो सपोर्ट्स दिस हाई नंबर, द कॉन्फिडेंस in the stock market.
Yes, because confidence of investors is increasing in the recent years, because earlier people were not that much confident about the Indian markets or the Indian economy, but now they have observed the numbers that the international organizations are speaking about India, that India is a bright spot in the global ecosystem, India is the fastest moving economy in the major economies, India's exports are becoming more and more visible in the global export trajectory, and India's infrastructure development is in a great gung-ho, that India's road development, port and airport, all these supportive activities are building more and more confidence among the investors, and they are becoming more reliant on the Indian economy and Indian markets. As you rightly said that that the DMAT accounts and people interest is now shifting from the physical assets to the financial assets, and stock markets are one of the major financial asset for them right now.
अगर हम बात करते हैं खासतौर पर सेक्टर्स की, और सेक्टर्स में देखें अगर हम, तो ऑटो, मेटल और कमोडिटीज आज बड़े हैं, लेकिन विशेष तौर पर अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर का एक अच्छा खासा रन अप आ चुका है, लेकिन स्टिल हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा और आता जा रहा है, तो ऐसे में आम निवेशक क्या करें जो ऑटो सेक्टर में खासतौर पर इंटरेस्टेड रहेंगे?
देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इन्वेस्टर्स के लिए इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंस। उनको कभी भी उतावले होके अगर किसी सेक्टर में किसी दिन गिरावट आती है तो ये नहीं होता कि उस सेक्टर में बहुत नेगेटिविटी आ गई है या उस सेक्टर में कुछ ऐसा गलत हो गया। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि ऑटो सेक्टर में बिकवाली थी
जी।
और आज हमने देखा तेजी है। कुछ दिन पहले देखा कि आईटी सेक्टर में बिकवाली थी, आज फिर हमने देखा कि कुछ दिन के बाद तेजी आ जाती है। तो ये एक, जैसे मैंने पहले बताया कि मार्केट्स का एक डायनामिक जो मूड होता है जिसमें कि लोग खुद ही, इन्वेस्टर ही, मार्केट्स तो चलती हैं लोगों के अनुसार, इन्वेस्टर्स के अनुसार, इन्वेस्टर जैसे चाहता है मार्केट्स वैसे ही चलेंगे। तो इन्वेस्टर जब देखता है कि मेरे को इस सेक्टर में बहुत अच्छी बढ़त मिल रही है और वो उसमें से शिफ्ट होकर दूसरे सेक्टर में एंटर करता है तो उसमें करेक्शन आती है, जब बहुत सारे इन्वेस्टर वैसा ही डिसीजन लेते हैं, तो जब उस सेक्टर में गिरावट के बाद एक स्तर ऐसा आ जाता है कि अब वैल्यू बाइंग आ गई है, अब हमें स्टॉक्स में वापस एंटर कर जाना चाहिए, देन द स्टॉक्स अगेन मूव अप. तो दिस इज द एक्चुअली डायनामिज्म ऑफ द मार्केट के हम अगर आज किसी सेक्टर में गिरावट है तो वो कुछ ऐसी घबराने की बात नहीं होती कि उस सेक्टर में कुछ कोई गलत पॉलिसी हो गई है या उस सेक्टर का अभी जो स्टोरी है वो एंड हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है. ऑल दी सेक्टर्स आर वेरी वेरी प्रॉमिसिंग बिकॉज इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज वेरी प्रॉमिसिंग, बट द करेक्शंस आर ऑलवेज देयर एंड प्रॉफिट बुकिंग्स आर ऑलवेज, इफ द पीपल आर नॉट बुकिंग देयर प्रॉफिट्स देन व्हाई टू इन्वेस्ट इन द मार्केट. सो प्रॉफिट बुकिंग ऑलवेज कम्स, करेक्शंस ऑलवेज कम्स, बट द डायनामिज्म ऑफ द मार्केट्स रिमेन्स स्ट्रांग एज वी हैव ऑब्जर्व्ड इन इंडियन मार्केट ड्यूरिंग द लास्ट नॉट ओनली लास्ट a few months or the quarters, but in the last many years. I would like to mention that markets during the last 5 years has been almost doubled. From 2019 level to 2024, there is 100% growth in the Indian market. So that is the confidence of the investor, confidence of the people, confidence of our reforms trajectory, confidence of our government, confidence of our policymakers that India is a great growth story, and that has been proved by the markets and the connotations made by the international organizations that India is driving the world growth system, growth vehicle. So that is the story.
The great Indian growth story.
Yes.
Two small queries, Dr. Sharma. You said inflation 3.6%. RBI says minimum it should be 4% for growth. Is that a cause of worry? And secondly, banks are now, they have reduced NPAs, very minimum. Now they are in good health, our public sector banks. Yet why do we see a shift from, and the interest rate is also very good, I think, 7% plus going by the international standards. Yet why do we see a shift from people moving from banks to stocks despite this? And we still know that about 52% of the population still believes in fixed deposits. How do you view that? These two queries, if you may.
Because I think investor preferences are different for the different investors, like age group and the and the many segments of the investors are investing according to their preferences. But the inflation, as you said, that RBI says 4%. RBI's tolerance level is 4%. That inflation must stabilize at 4%. But if the inflation remains below 4%, that is a great thing.
Okay.
That is providing a great support to the RBI's thought process that they are successful in containing the inflation trajectory and they have a great room to move forward with the softer stance of the monetary policy. So inflation must be in the benign conditions, like at around 4 or less than 4%. That is a great support to the Indian economy. I wish that that happens for the longer term, that inflation trajectory remains benign at 4% and a softening stance of the repo rate in the coming times, that too at around 4%, I would say, in the next 1 year or 2 years, that will be a great support to the economy, and the economy will be in a great gung-ho and moving to the double-digit growth rates in the coming times if that happens, that inflation trajectory remains below 4%. So, as you said, that preferences, like some people are investing in the fixed deposit, some are shifting from the fixed deposit to the equity. That is the risk-taking capacity, actually.
Right.
Sometimes some people are interested in the stable investments and stable returns and the long-term stability in their investments. But markets are always, fluctuating. Because markets are not constant, that markets are static and markets will remain at this level for many many months or many weeks. Even markets are not stable at a single point for minutes. Markets always move here to there, and sometimes upside and downside. So this behavior of the markets is a dynamic behavior, and that also provide a great returns to the investor, those who believe in the markets. Mm. But if we are wanting some regular return from the investments, then the fixed deposit, people invest in the fixed deposit. And if they are very bullish about the commodities, then some people also invest in the gold. So, different behaviors are there for the different people and different categories and different age groups.
That's right. इक्विटी मार्केट्स की तरफ है तो ये दिलचस्पी जो है एफआईआईज की भी हमें बीते समय में देखने को मिली लगातार अच्छा खासा इन्फ्लो जो है बाहर से आ रहा है तो आप इसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं कि लगातार इन्फ्लो बने हुए हैं साथ ही साथ हर महीने में जो एसआईपी का पैसा है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो आ रहा है बाजारों में वो लगातार बढ़ रहा है ग्रो कर रहा है और इसके पीछे आप क्या कारण देख रहे हैं कि लोगों की इतनी ज्यादा दिलचस्पी जो है और साथ में सतर्क रहने के लिए भी हम चाहेंगे कि आप श्रोताओं को बताएं क्योंकि इनमें से बहुत सारे जो हमारे लिसनर्स हैं वो नए निवेशक भी हैं जो पिछले एक डेढ़ साल में मार्केट्स में जुड़े हैं
देखिए सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों का इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा है और उनका जो कॉन्फिडेंस है इंडिया की मार्केट की तरफ बढ़ रहा है ये एक बहुत अच्छा संकेत है जो हमने देखा कि खास करके जो अभी कोरोना पीरियड के बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल है लोगों का बहुत बड़ा है क्योंकि मार्केट्स ने हमारी जो मार्केट्स थी मेरे ख्याल से वो कोरोना के दौरान बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स थी क्योंकि जो मार्केट्स में डिसेलिग्रेशन आई मार्केट्स में लगभग कोई 35-40% के आसपास की डिसेलिग्रेशन देखी गई थी लेकिन मार्केट्स ने वापस जो था 70-80% रिकवर किया जिस लेवल से वो गिरे थे उससे भी ज्यादा वो उच्च स्तर पे चली गई कुछ ही 3-4 महीने के अंदर ही तो इस बिहेवियर ने लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज किया कि भाई जो डिस्पाइट द डिसेलिग्रेशन डिस्पाइट द पैंडेमिक सिचुएशन डिस्पाइट द डिसेलिग्रेशन इन द ग्लोबल मार्केट्स इंडियाज मार्केट्स इज परफॉर्मिंग वेरी वेल एक्चुअली तो उस कॉन्फिडेंस के साथ उसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर को भी अभी मालूम है कि इंडिया एक बहुत बड़ी ग्रोथ स्टोरी है इंडिया के बारे में हम खुद नहीं बोलते वर्ल्ड स्पीक्स अबाउट अस वो हमारे बारे में बताते हैं कि इंडिया इज अ ग्रेट ग्रोथ स्टोरी इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोसिस्टम आईएमएफ सीज वर्ल्ड बैंक सीज तो हमारी जो स्टोरी है वो कोई एक दो व्यक्तियों के कहने पे नहीं है अब वो पूरे विश्व के कहने पे हमारी जो स्टोरी है अभी लोगों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अब पता चल गया है उनको और दूसरा जो हम देखते थे कि खास करके जो एफआईआईस हैं हमारे मार्केट को सपोर्ट करेंगे वो भी अभी नहीं रहा हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो मार्केट को सपोर्ट करता है तभी मार्केट्स में इतना स्ट्रांग मोमेंटम है नहीं तो अगर हमारी मार्केट्स एफआईआईस ड्रिवन होती तो इसमें बहुत सारे करेक्शंस अभी तक आ चुके होते तो जो पिछले 3-4 साल से जो रिटेल इन्वेस्टर की सपोर्ट मिली है जो उनकी अभी ट्रांजेक्शन तो मैंने जो देखा है पीछे कुछ डेटा मैं देख रहा था कि 45% से ज्यादा ट्रांजेक्शन तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स की हो रही है तो जिससे एक मार्केट में जो डोमिनेंस थी एफआईआईस की हम पहले कहते थे वो अब नहीं है अब हमारा रिटेल इन्वेस्टर मार्केट को सपोर्ट करता है दैट्स व्हाई मार्केट्स आर फ्रस्ट्रेटिंग दी बियर्स जो लोग देखते थे बिकवाली आएगी मार्केट्स तो बहुत डाउन टर्न में चली जाएंगी मार्केट्स में बहुत बड़ी करेक्शन आ जाएगी इलेक्शन के बाद करेक्शन आ जाएगी फिर इसके बाद करेक्शन आ जाएगी वो उनको नहीं मिली मार्केट्स ने अपना जो रवैया है जो उनका रुख है जो उनकी नेचर है जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के मार्केट्स आर ऑलवेज इंटेलिजेंट एक्चुअली तो इस वजह से ही मार्केट जो है हमारी
फर्क नहीं पड़ता है फायर पैसे निकाले तो भी मार्केट स्टेबल रहती है
हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर बहुत स्ट्रांग है उनका कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त बना है कि मार्केट्स में अब एफआईआईस का जो स्ट्रांग होल्ड होता था पहले के मार्केट में प्रॉफिट बुक किया और फिर आके वापस जब मार्केट नीचे स्तर पर देखी फिर एंटर कर गए तो अभी नहीं रहा
राइट All right, let's move on. Finance Minister Nirmala Sitharaman called on Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev on the sidelines of the 9th annual meeting of Board of Governors of AIIB in Samarkand yesterday. The finance minister informed the Uzbekistan president of the very productive meetings with deputy prime minister and with trade, investment and industry minister for fostering collaboration in new areas. These areas include digital technologies, fintech, AI, renewable energy, civil application of nuclear energy, healthcare and pharma sector. She suggested to President Mirziyoyev that bilateral discussion on cooperation in fintech and a cross-border real-time payment system will be of great convenience to students, tourists and businesses on both sides.
और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर. पांच प्रमुख एशियाई सूचकांकों में से चार बढ़त के साथ बंद हुए. हांगकांग के हैंगसिंग में 4% की मजबूती दिखाई दी. चीन के शंघाई कॉम्पोजिट में लगभग 3.5% की तेजी रही. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी और जापान के निकेई में 2.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई. वहीं सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.3% की मामूली गिरावट देखने को मिली. यूरोपीय बाजारों की बात करें तो वहां आज मजबूती का रुख दिखाई दिया. अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 1.5% के लाभ में था. जर्मनी का डैक्स 1% से अधिक बढ़ा और लंदन का फुटसी 0.2% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था.
एंड लुक एट द यूएस मार्केट्स नाउ. वेल, द यूएस स्टॉक्स डिस्प्लेड मिक्स्ड ट्रेंड यस्टरडे विद द एस&पी 500 एंड डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज स्नैपिंग देयर विनिंग स्ट्रीक. डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज डिक्लाइंड मोर देन 0.5% एंड द एस&पी 500 लॉस्ट 0.19%. मीनवाइल, द नाजदा कंपोजिट वाज मार्जिनली अप 0.04%. And what do you have to say on the U.S. markets, Dr. Sharma? Big comment.
Yes, U.S. markets are, I believe, hovering at around all-time high, and because of the Fed rate cut of 50 basis points, so that is providing a great momentum to the markets at this juncture. Uh-huh. So going forward, if the Fed rate cut continues, then there is a great potential to become more and more strong and to make new highs by the U.S. markets also.
May they be a success because they have a ripple effect on the world.
Yeah.
In that sense.
That is always.
और आज हांगकांग में भी लगभग 4% की मजबूती दिखाई दी है. ये मतलब एक अच्छा नंबर है.
जी.
इसके पीछे क्या कारण आप देख रहे
हैं? देखिए, कारण वही है कि एक जो ग्रेट अभी जो डेवलपमेंट हुई, जो डिस्पाइट दी जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स, जो फेड रेट का ज्यादा असर हुआ, मतलब जो नेगेटिविटी थी उसका असर अभी देखने को नहीं मिला है. जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई उसने सभी मार्केट्स को काफी अच्छी सपोर्ट दी.
जी.
All right. Well, oil prices fell today amid reports that Saudi Arabia, the world's top crude exporter, will give up on its price target for raising output. In the global crude market, Brent crude was trading 2.5% down at $71.58 per barrel, and the U.S. West Texas Intermediate WTI was trading 2.6% down at $67.85 per barrel when reports last came in.
जी, और सोने और चांदी का हाल भी जान लेते हैं. सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.25% बढ़कर 75,830 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 1.36% बढ़कर 93,300 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई. तो डॉक्टर शर्मा, सोने पे आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सोने पे मैं आई एम ऑलवेज बुलिश ऑन गोल्ड के प्राइसेस में बहुत अच्छी एप्रिसिएशन आई है और आती रहेगी. इसमें चमक हमेशा बनी रहेगी क्योंकि जो ग्लोबल सिचुएशन है वो अभी टोटली गोल्ड की फेवरेबल स्थिति में है. जो कि हम देख रहे हैं जियो पोलिटिकल हेडविंड्स हैं. हाँ. और अभी जो पॉजिटिव साइड पे जो फेड ने रेट कट करना शुरू कर दिया है, अगर और कट करता है तो उससे गोल्ड को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी. हाँ. तो जो हमारा पहले एक टारगेट था कि हम 75,000 का स्तर देख पाएंगे, वो हमने बड़े अच्छे से देख लिया है. तो आने वाले टाइम में शायद अभी हमें इससे और ज्यादा 80,000-85,000 का रुख गोल्ड का आने वाले टाइम में लग रहा है.
जी, लेट्स सी.
तो श्रोताओं, अब इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं. और डॉक्टर एसपी शर्मा जी, आपका मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
जी, शुक्रिया. थैंक यू.
और अंत में अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ लालिमा अनिजा डांग.
थैंक यू स्पर्श. वेल, डोमेस्टिक इक्विटी बेंचमार्क इंडिसेस कंटिन्यू अपवर्ड. मार्च सेंसेक्स एंड्स एट न्यू क्लोजिंग हाई ऑफ 85,836, व्हाइल निफ्टी सेटल्स एट फ्रेश पीक अबव 26,200. Finance Minister Nirmala Sitharaman attends 9th annual meeting of AIIB Governors Board in Samarkand. And crude oil prices fall. Brent crude is trading down at $71.58. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchors, Sparsh Saxena, signing off. Namaskar. Market Mantra.